शांति। ओम शांति। आज का स्वमान क्या है? मैं खुशनुमा आत्मा हूँ, सर्व को खुशी का अनुभव कराने वाली आत्मा हूँ। और आज बाबा ने मुरली में जो वरदान दिया वो किसको याद है? आज की मुरली में बाबा ने वरदान क्या दिया? आज बोलो, स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही सो समान भव, जिसके विश्लेषण में बाबा ने कहा कि बच्चे कहते हैं हम बाबा के स्नेह का रिटर्न देना चाहते हैं तो क्या दे रिटर्न में? तो क्या कहा बाबा ने? अपनी कमजोरियों को त्याग दो। भक्ति में तो भगत सिर उतार कर रखने के लिए तैयार होते हैं, मगर मैं यहाँ तुम्हें शरीर वाला सिर उतारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कौन सा सिर उतारने के लिए कहता हूँ? रावण वाला सिर, कमजोरियों वाला सिर छोड़ने के लिए कहता हूँ, त्यागने के लिए कहता हूँ। तो अगर रावण वाला सिर उतार देंगे तो बिना सिर के फिर कौन से सिर से काम करेंगे हम? तो मैं एक पहले कहानी शेयर करूंगी आपको। एक राजा था और उसका एक वजीर था, और वजीर इतना इंटेलिजेंट था कि राजा छोटे से छोटा निर्णय लेना हो या बड़े से बड़ा निर्णय लेना हो, राज्य में जब कोई समस्या परिस्थिति आती है तो कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, तो चाहे छोटे से छोटा निर्णय लेने की बात हो चाहे बड़े से बड़ा निर्णय लेने की बात हो, राजा उस वजीर पर ही पूरा निर्भर था, क्योंकि उसके निर्णय पर राजा को पूरा पूरा विश्वास था, ट्रस्ट था। लेकिन ऐसा विश्वासु वजीर एक दिन मृत्यु को पा गया। अब राजा के लिए तो बहुत बड़ी हानि हो गई। अब किसको वजीर नियुक्त करूं मैं? तो उसका जहां तक साम्राज्य फैला हुआ था उन्होंने ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई अपने अपने शहर से, अपने अपने राज्य से, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट जिसको आप समझते हो मेरे पास पेश करो, और उनको पेश किया गया। तो काफी राज्य होते हैं, काफी शहर होते हैं। उसने कहा अभी मैं प्रतियोगिता रखूंगा, और उस प्रतियोगिता के माध्यम से उनके, क्योंकि पहले सेमीफाइनल करना होता है फिर फाइनल, है ना, सीधा ही फाइनल नहीं ना, तो छटनी करनी होती है ना, पहले तो छटनी की कि आप जिनको अपने राज्य में इंटेलिजेंट समझते हो उनको भेजो, अब उसमें से सेमीफाइनल करना था। तो कुछ लोगों की बैठक बुलाकर, सभा बुलाकर उनको ही कहा कि आप इनमें से कोई प्रतियोगिता आयोजित करके और इनको सेमीफाइनल में क्रॉस करके देखो फाइनल में कितने पहुंचते हैं। तो उसमें से तीन लोग फाइनल में पहुंचे। अब ये राजा के पास आए, क्योंकि अब फाइनल राजा को स्वयं करना है। तो राजा ने कहा कि देखो मुझे तीन में से अभी डिसाइड करना है, सिर्फ एक को चुनना है कि कौन मेरा वजीर बनने वाला है। और उसके लिए कंडीशन ये है कि आज मैं तीनों को एक कारागृह में बंद करने वाला हूं। सूर्यास्त के समय तीनों को मैं कारागृह में डालूंगा और फिर आपने क्या करना है, सूर्योदय से पहले पहले कारागृह ताला लगा होगा उसको, जिस कारागृह में तुम्हें डालूंगा उसको ताला लगा हुआ होगा। और आप में से आपने क्या करना है, सुबह सूर्योदय से पहले उस कारागृह से बाहर निकल के आना है। कैसे निकल कर आओगे उस ताले को तोड़कर, वो आपकी परीक्षा है। क्योंकि निर्णय की बात है ना, वजीर जीवन में आई हुई समस्याओं का निर्णय देने के लिए चाहिए। तो एक समस्या सामने खड़ी की अभी उनके सामने कि देखो इस समस्या में ये समाधान कौन लेकर आने में समर्थ है। तो हुआ क्या, पहले तो तीनों जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि आप समझते हो कि आप मेरे वजीर बनने योग्य हैं? तो कहा हाँ। तो क्या बेस है आपके पास कि जिस आधार से आप कहते हो कि हाँ मेरे में आपके वजीर बनने की क्षमता है? तो एक व्यक्ति जो था उसमें से, वो एक पंडित था। पंडित माना जो पोथियां पढ़ता है, जो शास्त्र पढ़ता है। तो जो पोथियां जो शास्त्र वो पढ़ता था, वो सारा बोरे में भर के लेके आया था कि कहा जब जब कोई समस्या होगी उन समस्या का समाधान इनमें से मैं खोज लूंगा और इस आधार से मैं कहता हूं कि मैं आपका वजीर बनने योग्य हूं। दूसरे से कहा कि तुम किस आधार से कहते हो कि तुम मेरे वजीर बनने लायक हो, कौन सी ऐसी आपके पास विशेषता है, योग्यता है, क्षमता है? तो दूसरा विचारक व्यक्ति था, तो उसने कहा मैंने दुनिया के विचारकों की खूब सारी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में मेरे अंदर है। पंडित तो हार्ड कॉपी लेके आ गया, विचारक कहता सॉफ्ट कॉपी के रूप में मेरे अंदर में, मेरी मेमोरी में फिट है। जब भी कोई समस्या आएगी मैं अपनी सॉफ्ट कॉपी को टटोलूंगा और कहीं ना कहीं से वो समाधान देने में मैं सफल होऊंगा। फिर तीसरे को पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, इन्होंने तो बताया हार्ड कॉपी है इनके पास, दूसरे ने कहा मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, तुम कौन सी योग्यता रखते हो? मैं तो तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ एक मीठी सी मुस्कान देख रहा हूं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तीसरे ने कहा ये मेरी मीठी मुस्कान ही मेरी योग्यता है समस्या का समाधान ढूंढने की, कि चाहे जीवन में कैसी भी बातें आ जाए मेरे चेहरे से मीठी मुस्कान कभी नहीं जाएगी और यही मेरी मीठी मुस्कान मुझे समस्या का हल देने में मदद करती आई है, सो करेगी, ये मेरा आधार है। तो कहा ठीक है, अब मैं शाम को सूर्यास्त होगा, तुम तीनों को कारागृह में डालूंगा, लॉक किया होगा कारागृह, आपको सूर्योदय से पहले उसमें से निकलना है। अब अपनी आपको यूज करना है आपकी क्षमताओं को, योग्यताओं को, कि कैसे जो ताले से बंद है कारागृह का दरवाजा, उसको कैसे आप खोलेंगे और कैसे आप बाहर आएंगे। और साथ साथ कह दिया कि ताला जो है विशेष प्रकार की डिजाइन का है और उसमें एक विशेष प्रकार की कोडिंग भरी हुई है कि जिस कोडिंग से वो खुल सकता है। उसको क्रैक करेंगे, उस कोड को क्रैक करेंगे तो ही वो खुलेगा। ठीक है, तीनों कारागृह में चले गए। पहले वाले ने अपनी हार्ड कॉपी की योग्यता दिखाई थी, पूरे तो लोगों ने पहले लोगों में भी बातें चली कि ये जो समस्या, ये जो बात राजा ने रखी है, अब ये कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे निकल कर आएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा वो पंडित के पास इतना पोथी शास्त्र है, वो पढ़ लेगा, और उसमें से कहीं तो भी, क्योंकि दुनिया के अंदर मान्यता ये है ना कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं होती है। अगर ताला है तो चाबी होती है, और वो शास्त्रों में हर चीज का समाधान है। शास्त्रों में दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो फिर दूसरों ने कहा, लेकिन 12 घंटे में पूरे शास्त्र पलटा लेगा क्या वो? सूर्योदय से सूर्यास्त कितना टाइम होता है? तो कहा ठीक है, अगर वो नहीं कर पाया 12 घंटे में, लेकिन सॉफ्ट कॉपी वाला तो कर लेगा, उसके पास तो दिमाग में भरा पड़ा है ना, तो दिमाग में तो जंप लगाते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में क्या करते हैं, कोड डाल देते, कोई भी एक मुझे कुछ चाहिए वो वर्ड डाल दो, उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स खोलता है, बाकी वाले नहीं खोलेगा। लेकिन इसको तो क्या करना पड़ेगा, पूरे पन्ने पलटाने पड़ेंगे, या फिर उस जो विषय सूची है उसको देखे भी, आखिर पन्ने पलटाने में टाइम कितना लगेगा उसको। लेकिन सॉफ्ट कॉपी वाले को इतना नहीं लगता है ना, कंप्यूटर में डाल दिया है, फटाक से कितने सारे उससे रिलेटेड चीजें सामने आती है, ये शायद कर लेगा। लेकिन फिर कहा नहीं नहीं, ये भी कैसे करेगा, उसमें कहां से मिल जाएगा उसको कोड। तीसरे ने कहा वो शायद मधुर मुस्कान वाला, पर मधुर मुस्कान से कोई समस्या का समाधान होता है क्या कभी? का 12 घंटे इंतजार कर लेते ना, क्यों इतना दिमाग चला रहे हम, 12 घंटे में देख लेते हैं। और हुआ ऐसे ही, रात भर उस पंडित ने सारे पन्ने पलटा लिए, लेकिन उसको समाधान नहीं मिले। आखिर रात भर जो पन्ने पलटाता रहेगा, एक एक पढ़ता रहेगा, उसका सुबह तक फेस कैसा हो जाएगा? रात भर जो सोने का समय है उसका भी त्याग करके आखिर सुबह होते होते क्या होगी, थकान से घिरेगा या नहीं घिरेगा? दूसरा जो दिमाग चलाएगा उसका भी क्या हाल होगा? एक लिमिट होती है ना, सोने का समय है वो, तो ऐसे थोड़ी कि उनको कहा गया आप दिन में रेस्ट कर लो पहले, वो भी नहीं था। तो दोनों ने तो अपने तरीके से, उसने हार्ड कॉपी में चेक किया, उसने अपने सॉफ्ट कॉपी में चेक किया, मतलब दिमाग में चेक किया, लेकिन थक गए पर अभी तक समाधान नहीं मिला। और जब व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, और जब बैठ जाते हैं तो झपकी भी थोड़ी आ जाती है। और उतने में ही ये तीसरा व्यक्ति, ये तो रात को ही, ये जो परेशानी में लगे हुए थे, ये तो 10-15 मिनट में क्या किया, अंदर कारागृह में चक्कर भी लगाया, और जिस गेट के ताले को क्रैक करके बाहर आना है उस तरफ जाके पहले झांक के बाहर हाथ लगा के देख के आया, फिर चक्कर लगाया, फिर एक बार और गया, और ऐसा अंदर आके आराम से खर्राटे मार के सोने लगा। और सुबह नेचुरल है, मधुर मुस्कान है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आराम पे नींद, समय पर नींद पूरी हो गई, और समय पर नींद खुल भी गई सूर्यास्त होने से, सूर्योदय होने से पहले पहले। तो इनको झपकी भले लगी है पर गहरी नींद तो नहीं होती, क्योंकि कंसर्न तो है ना उनको। तो ये बंदा जिसने अच्छी नींद कर ली है, और रात को पहले उसने सब देख लिया था, 10-15 मिनट में वो भाप गया था समस्या को, और उसने सुबह उठ के सूर्यास्त से पहले हाथ दरवाजे से बाहर किया, ताला खोला, बाहर आ गया, तो बाहर तो राजा मिल गया उसको। क्योंकि डेफिनेटली है राजा इतना बड़े पद की नियुक्ति करने जा रहा है और उनको जिस प्रतियोगिता में रखा है, जो परीक्षा उनसे पास करवा रहा है, वो भी तो कुछ उनके ऊपर निगरानी रखेगा या नहीं, उसको मॉनिटर करेगा या नहीं। तो मॉनिटरिंग कर रहा था कि कर क्या रहे रात भर। सुबह जैसे ही वो बाहर आया, मधुर मुस्कान वाला, बिना चिंता टेंशन वाला, राजा ने उसको गले लगाया और कहा, अब से तुम मेरे राज्य के वजीर हो। अभी वो जो सो गए थे, झपकी थी ना, अभी पूरी गहरी नींद तो नहीं थी ना, कंसर्न तो रहता है, तो इनको आवाज सुनाई दी तो फिर अलर्ट हो गए। और अलर्ट हो गए तो देखा तो राजा इसको गले लगा रहा और कह रहा है, तुम मेरे वजीर हो। तो इनके मन में प्रश्न आता है, ऐसे कैसे वजीर आपने घोषित कर लिया, अभी हम दो ऐसे ही बैठे हैं। तो राजा कहता है, शर्त तो यही थी ना, जो सूर्योदय से पहले निकल कर आएगा ताले को क्रॉस करके, दरवाजे को खोल के, वो मेरा वजीर बन जाएगा। तो तुम तो अंदर ही हो और ये तो निकल के आ गया। तो उनको बात तो स्वीकार हो गई, लेकिन कहा कि आखिर इसने ये ताला खोला कैसे, हमने अपनी हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में चेक कर लिया, रात भर ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो गए, और ये तो मजे से खर्राटे की नींद सो रहा था, इसने खोला कैसे। उससे पूछा कि तुमने खोला कैसे, कहा आपने मुझे नोटिस किया होगा रात को ही कि मैं दरवाजे तक गया था, दरवाजे से बाहर हाथ भी डाला था और फिर बाहर आ गया था। तो बोले, जब मैं पहली बार गया तो मैंने हाथ डाल के क्या नोटिस किया, इस ताले में कोड डालने जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर कोड वाला है तो कोड डालने की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना, जैसे आप देखो जो नंबर वाला होता है तो नंबर घूमेंगे, वैसी व्यवस्था है ना उसमें। उसने बोला उसमें कोड वाली व्यवस्था ही नहीं थी, तो कोड के बारे में सोचने की तो बात ही दूर है। फिर बोला, मैं दूसरी बार फिर से चक्कर लगाया और जब बहुत पैनी नजर से देखा, बहुत शार्पली देखा, बहुत फोकस्ड होके देखा कि ताला तो अस्तों में बंद नहीं, लेकिन ऐसी कंडीशन में रखा है कि दिखाई पड़े बंद। हम भी हमारे बाथरूम का ऐसे लगाते क्यों, क्योंकि हमारा जो रूम है ना, ऐसी जगह पर है, पीछे वाले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आते हैं, पार्टी वाले जो भी आते हैं, क्योंकि ढूंढते रहते हैं ना पास में बाथरूम किधर है, तो कोई इशारा कर देता है इधर है, तो सारा हमारा बाथरूम गंदा करके चले जाते हैं। तो हमको भी क्या करना पड़ता है, वैसा वाला लाग लगाना पड़ता है कि बंद नहीं करते हैं, क्योंकि फिर रोज कौन खोले, रोज कौन बंद करे, क्योंकि सुबह जो स्वीपर आएगा फिर खोलो फिर बंद करो, लेकिन ऐसा लटका के रखते हैं कि दूर से किसी को आभास हो बंद हो, पर है नहीं बंद। तो उस तीसरे ने यही कहा कि मैंने रात को ही, क्योंकि समस्या तो ताला था ना हमारा, तो समस्या को पहले, समाधान ढूंढने से पहले समस्या को देखना होता है, बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी का कारण किधर है उसको पकड़ना होता है। तो मैंने समस्या को पहले देख लिया और देखा समाधान तो यूं है और इस तरीके से मैं निकल आया। तो कहा, आपको यह अक्ल कैसे आई, कहा मैंने आपको पहले ही कहा, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन मुझे सदा मुस्कुराना है, और मुस्कुराना है अर्थात कब मुस्कुरा सकते हैं आप, जब आप भीतर से शांत होंगे। कब आप शांत होंगे, जब आप अपने सत्य स्वरूप में देखेंगे। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, कौन था, जो आत्म स्वरूप का ज्ञान रखता था, जो परमात्मा का ज्ञान रखता था, जिसे ये पता था कि अपने सत्य स्वरूप पे जब हम टिक जाते हैं तो हमारी वो फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाती है जो भगवान की फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं और भगवान की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ऐसे में जब हम उसको याद करते हैं, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और उसके सामने अपनी बात रखते हैं और वो हमें बता देता है। उसने हमें दिव्य बुद्धि दी है, तो हमने देख लिया है कि हमें रावण वाली बुद्धि द्वापर से हमने यूज की, मायावी बुद्धि यूज की हमने, और हमारा हाल हम देख लिया ना। लेकिन अब यह हमें क्या करना है, दिव्य बुद्धि को यूज करना है, इंट्यूशन को यूज करना है, और उसके लिए कुछ पल अपने आप को शांत कर लेना होता है, जिसके लिए ही पहले ही दिन आपको कहा गया था, भट्टी का अगर पूरा लाभ लेना है, अंतर्मुखी हो जाओ। मन बुद्धि जो इंद्रियों के गलियारे में खड़े होकर बार बार बाहर झांक रहा है, उसको अंदर की तरफ लेके जाओ। जब अंदर की तरफ लेके जाएंगे, उस सत्य स्वरूप का दर्शन करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पर आएंगे, भगवान की दी हुई बातें, भगवान ने जो दिव्य बुद्धि दी है उसका यूज करेंगे, तो भले ना हम अंदर जाएंगे तो दुनियावी बातों का भी जो अंदर इकट्ठा जमाव पड़ा है, तो अंदर जाते ही हो सकता है कभी कभी सत्य स्वरूप पर ध्यान न टिके, और जो बाहर से डेटा अंदर गया है वही अंदर हमारे सामने दिखे, हो सकता है ना। लेकिन फिर भगवान का ज्ञान याद करेंगे, मायावी बुद्धि कहती है उसने मेरे साथ गुस्सा किया है तो मुझे तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी, उसने मेरा बिगाड़ा है। लेकिन दिव्य बुद्धि क्या कहती है, दिव्य बुद्धि कहती है नहीं, मेरा जो सत्य स्वरूप है, मेरे जो ओरिजिनल संस्कार है, वर्तमान में मुझे उसे यूज करना है। ये जो मेरे संस्कार बन गए थे कि किसी ने मेरा बुरा किया है तो मुझे उसके साथ गुस्सा करना है, उसके साथ घृणा करना है, ये मायावी बुद्धि थी। अब मायावी बुद्धि ने तो मेरा ये हाल कर दिया है, अब तो बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि दी। किस लिए दी दिव्य बुद्धि, यूज करने के लिए दी है ना। तो अंदर में जाने के बाद हो सकता है कि सत्य स्वरूप पर मेरा मन न टिके, मेरे जीवन में होने वाली बातें मुझे बार बार याद आए, मेरे घर में ऐसी बात है, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया फलाना। लेकिन उस समय दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दिए, जो ज्ञान सुन रहे, जो हम कह रहे थे ना, रोज ज्ञान सुनेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर उसका एकांत में बैठकर यूज करना है, और उसको यूज करते करते ये जो अन्य बातें आ रही थी सत्य स्वरूप के ऊपर, जैसे कि बादलों के रूप में, उस बादलों को हम हटा सकते हैं और सत्य स्वरूप में ध्यान टिका सकते हैं। तो जो बाबा ने कहा, जो भट्टी का हमारा थीम है, संपन्नता की ओर बढ़ना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, ये संभव तभी है जब हम अंतर्मुखी हो जाएं, हंस बुद्धि शीर नीर विवेक को अपनाना शुरू करें, और उसके आधार से जो अंदर में कचरा है उसको साइड करें। आज दिन तक हम उसको अच्छा समझते आए थे, लेकिन दिव्य बुद्धि कह रही है ये कचरा है, यही तो करना है ना। शीर और नीर को अलग, हंस की विशेषता पिछले संडे बहुत डिटेल में बाबा ने सुनाई। तो आज तक हम परिस्थितियों को रावण वाली बुद्धि के अनुसार देखते थे और सलूशन ढूंढते थे, वही किया ना, शास्त्रों में जो भरा है उसके आधार से देख रहे थे, जो सॉफ्ट कॉपी भरी है विचारकों की, लेकिन काम नहीं आई, समस्या को देखा नहीं ठीक से, बस उसकी होड़ में लगे। तो हम भी समस्या को देखें, दिव्य बुद्धि को यूज करें, सत्य स्वरूप में टिक जाए जब भी कोई बात आए। तो यहां पे हम फिनिश करते हैं। ओम शांति।